ओम शांति। 16 फरवरी 1967 का प्रातः क्लास चल रहा था सुरंगा में।
ओम शांति। द मॉर्निंग क्लास ऑफ 16 फरवरी 1967 वॉज गोइंग ऑन एट सुरंगा।
पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी।
द टॉपिक विच वॉज गोइंग ऑन इन द मिडिल एंड ऑफ द फर्स्ट पेज वॉज
ये रसम रिवाज जो भक्ति मार्ग में चलते चले आ रहे हैं वो कहाँ से आए।
Where have these customs and traditions that are prevailing in the path of devotion come from?
कब से आए?
From when did they come?
कब से का जवाब होगा द्वापर युग से आए।
The answer for from when will be since the copper age.
और द्वापर युग में कहाँ से आए?
And from where did they come in the copper age?
जो भी भक्ति मार्ग के रसम रिवाज हैं वो कहाँ से आए?
Where did all the customs and traditions of the path of bhakti come from?
चाहे ब्राह्मण खिलाना हो,
whether it is feeding the brahmins,
चाहे ब्रकुटी में बिंदी लगाना हो,
whether it is applying the bindi on the center of the forehead,
भांति भांति के रसम रिवाज हैं।
There are various types of customs and traditions.
ये कहाँ से आए?
Where did they come from?
कहेंगे संगम युग से आए।
It would be said they came from the conference age.
अभी अभी परमात्मा बाप जब संगम युग में आते हैं तो ज्ञान की बातें बताते हैं।
At present, when the Supreme Soul Father comes in the conference age, he imparts knowledge.
उस ज्ञान को जीवन में जो धारण करते हैं,
those who put into practice that knowledge in their lives,
वो प्रैक्टिकल ज्ञान युक्त काम करते हैं,
परफॉर्म प्रैक्टिकल नॉलेजेबल टास्क।
जैसे ब्राह्मण खिलाने वाली बात चल रही थी मुरली में।
फॉर एग्जाम्पल द टॉपिक ऑफ फीडिंग द ब्राह्मिन्स वॉज गोइंग ऑन इन द मुरली।
यहाँ भी बाबा आत्माओं को बुलाते हैं।
हियर ऑल्सो बाबा कॉल्स दोज सोल्स
जो पहले यज्ञ में थे कारण या कारण शरीर छोड़ के चले गए।
हु आर प्रेजेंट इन द यज्ञ एट द बिगिनिंग एंड फॉर सम रीजन और द अदर लेफ्ट देयर बॉडीज एंड वेंट अवे।
वो आत्माएं कोई में प्रवेश करती हैं ब्राह्मण में, उनसे पूछा जाता था।
दोज सोल्स एंटर इन सम ब्राह्मिन्स एंड दे वेर क्वेश्चन्ड।
तो भक्ति मार्ग में भी ये रस्म रिवाज चली आई कि कोई मरते हैं तो उनकी आत्मा को ब्राह्मणों में बुलाते हैं।
Therefore, in the path of bhakti too, this customary practice has prevailed. When someone dies, their soul is called in Brahmins.
वास्तव में ये सब रियल बातें यहाँ की हैं। कहाँ की? संगम युग की।
Actually, all these are the real issues of the present time, of when, of the conference age.
हम आत्माओं को बुलाते हैं ना?
He calls us souls, doesn't he?
बाप आत्माओं को बुलाते हैं ये समझाने के लिए कि तुम ज्ञान में आते थे।
The father calls the souls to explain to them, you used to come in knowledge.
आत्माओं को बुलाते हैं ये समझाने के लिए कि तुम ज्ञान में आते थे।
He calls the souls to explain to them, you used to come in knowledge.
जैसे बाबा कोई बच्चों को इमर्ज करके बोलते हैं तो उनसे तुम कहते हैं ना?
Just as Baba sometimes emerges some children and speaks to them, he refers to them as you, you, doesn't he?
सन्मुख वाले को क्या कहा जाता है? तुम। ऐसे ही आत्माओं को बुलाते थे कोई ब्राह्मण में।
How the person in front is addressed? He is addressed as you. Similarly, he used to call the souls in some Brahmin.
और समझाते थे कि तुम आते थे, तुमको कितना समझाते थे।
And explain to them, you used to come to take knowledge, and how much I used to explain to you.
कि बाप को याद करो और पवित्र बनो।
To remember the father and become pure.
उनको समझाते थे कि तुम बाप को याद करो और क्या करो? पवित्र बनो। अच्छा।
He used to explain to them to remember the father and do what? become pure. Okay.
जिन आत्माओं को बुलाते थे वो आत्माएं कोई खास आत्माएं होंगी या साधारण आत्माएं होंगी?
Would the souls who were called be special souls or ordinary souls?
यज्ञ के आदि की कोई खास आत्माएं थी, उनको बुलाते थे.
There were some special souls of the beginning of the yagya. He used to call them.
समझाने के लिए कि तुम भी ज्ञान में आते थे.
To explain, you too used to come in knowledge.
तुमको समझाते थे पवित्र बनो, लेकिन तुम पवित्र नहीं बने.
You were told to become pure, but you didn't become pure.
तुमने नहीं माना. कौन समझाते थे? हैं?
You did not accept. Who used to explain?
दादा समझाते थे कि बाप समझाते थे? बाप समझाते थे.
Did dada used to explain or did the father used to explain? Did the father used to explain?
कौन समझाते थे? बाप समझाते थे. शिव बाप समझाते थे.
Who used to explain? Did the father used to explain? Did father Shiv used to explain?
कि दादा समझाते थे. ब्रह्मा बाबा समझाते थे.
Or did the dada used to explain? Did Brahma Baba used to explain?
अभी तुम्हारा पद भ्रष्ट हो गया.
Now your position has degraded.
तुमने नहीं माना, अभी तुम्हारा पद भ्रष्ट हो गया.
You did not accept. So now your position has degraded.
पद भ्रष्ट हो गया माना? इसका क्या मतलब हुआ?
What is meant by the position has degraded? What does it mean?
अगिरती कला में आ गए.
You came in the declining trend of the celestial degrees.
अच्छा. पुरुषार्थ करते करते तुम गिरती कला में आ गए, तुम्हारा पद भ्रष्ट हो गया.
All right, while doing effort, that is for the sake of the soul, you came in the declining trend of the celestial degrees and your position was degraded.
तुम चंद्रवंशी बन पड़े.
You became of the moon dynasty, चंद्रवंशी.
क्या? चंद्रवंशी बन पड़े.
What? You became of the moon dynasty, चंद्रवंशी.
अच्छा, उस समय क्या फाइनल हो गया था?
Okay, was it the final at that time?
फाइनल एग्जाम हो चुका था क्या? फाइनल एग्जाम तो हुआ नहीं.
Was the final exam over then? The final exam did not take place.
तो पदभ्रष्ट कैसे हो गए?
Then how did their position degrade?
है? पदभ्रष्ट हुए या नहीं हुए?
Was their position degraded or not?
वास्तव में जो भी ज्ञान में चलते हैं और ज्ञान में चलने के बाद.
Actually, all those who are in the knowledge and after following the path of ज्ञान.
अगर पुरुषार्थ में नीचे आ जाते हैं तो उनके नीचे गिरने की शूटिंग हो जाती है.
If they come down in the terms of effort, then the shooting of downfall takes place.
तो उनके लिए भी बोला तुम पद भ्रष्ट हो गए.
So it was said for them too. You were deprived of the position.
कोई का ऐसा पुरुषार्थियों का भी है हिसाब किताब कि ब्राह्मण जीवन में आने के बाद कब नीचे न गिरते हो?
Are there effort makers with such karmic accounts that after adopting the Brahmin life they do not encounter downfall?
है? माया उनको लोड़ा न खिलाती हो?
And Maya doesn't defeat them?
नीचे तो सब गिरते हैं और माया सबको नीचे ऊपर करती है.
Everybody falls down and Maya makes everybody shake up and down.
फिर उनसे पूछा गया कि तुम पदभ्रष्ट हो गए, रिजल्ट दिया, तो ये किसने पूछा होगा?
Then they were asked, you were deprived of your position. The result was given. Who would have asked this?
शिव बाप को आत्माओं की बुलाने की जरूरत है?
Is there any necessity for Father Shiv to call the souls?
है? शिव बाप वो आत्माओं को आह्वान करेंगे कि तुम इसमें आओ. तुमसे कुछ पूछे? क्यों?
Will Father Shiv invoke the souls and say, come in him, let me ask you something. Why?
शिव बाबा तो जानी जान, शिव बाप तो जानी जाननहार है ही, वो तो अंतर्यामी है.
Father Shiv is already the one who knows everything. He is Antaryami, the one who knows the inner self.
Bahiryami कौन है? अरे?
Then who is Bahiryami? That is known through the external behavior. Someone said something. अरे?
वो तो यज्ञ के आदि में चला ही गया, उसी की तो बात हो रही है.
He suddenly went away in the beginning of yajna. It is just him we are talking about.
उसी आत्मा को तो बुलाया गया. तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा.
It was that very soul which was called. So Brahma Baba asked.
और ब्रह्मा बाबा ने ही अपनी तरफ से जवाब दिया कि अब तुम पदभ्रष्ट हो गए, तुमने नहीं माना.
And Brahma Baba himself replied, now you are deprived of the position. You didn't accept.
क्या? तुम पदभ्रष्ट हो गए, तुमने हमारी बात को नहीं माना.
What? You are deprived of the position as you didn't accept our word.
आगे जो मरे थे, फिर बच्चों से कहा.
Those who had died before, he then told to the children.
सभा में बच्चों से कहा, आगे जो मरे थे.
He told the children in the gathering, those who had died earlier.
फिर भी बड़े होकर कोई 20, कोई 25 के हो गए होंगे.
Then after growing up, someone would have become 20 years and someone 25 years of age.
बाबा की नजर कोई विशेष दो आत्माओं के ऊपर है.
Baba's attention was towards two special souls.
और ये भी जानते हैं कि वो कब मरे थे.
And he also knows when they died.
सन 67 की वाणी है. तो सन 67 की वाणी में 20 और 25 वर्ष घटाए जाए तो कौन सा सन आएगा?
The vani is of the year 67. Therefore, in the vani of the year 67, if we subtract 20 and 25 years, which year will come?
67 में से 20 घटाए, सन 47 आए, 46-47 आएगा ना?
If 20 is subtracted from the year 67, it comes to the year 47. It will come to the year 46-47, won't it?
माना कोई एक आत्मा थी जिसने 46-47 में शरीर छोड़ा और फिर जन्म कहीं ले लिया.
It means that there was a soul who left the body in the year 46-47 and then took birth elsewhere.
उनके लिए बोला कि वो 20 वर्ष के हुए.
For that one it was said, that one is of 20 years.
और दूसरी आत्मा के लिए बोला 25 वर्ष के हो गए होंगे.
And for the other soul it was said, that he would have become of 25 years.
तो सन 67 में से 67 में से 25 वर्ष घटाए.
So if we subtract 25 years from 67,
तो कौन सा सन आया? 42 आया.
Then which year comes? It comes to the year 42.
माने उस बच्चे का जन्म 42 में हो चुका है और सन 67 में वो 25 साल का हो गया.
It means that child has taken birth in 42 and in the year 67 he became of 25 years.
ज्ञान भी ले सकते हैं. वो बच्चे ज्ञान भी ले सकते हैं.
They can even take the knowledge. Those children can even take knowledge.
ले सकते हैं का मतलब?
What does it mean by they can take?
आने वाला जो टाइम है सन 67 के बाद.
The time that is going to come after the year 67.
या सन 67 से कुछ आसपास पहले भी.
Or around the year 67 and even earlier too.
हो सकता है उनमें से किसी ने ज्ञान ले लिया हो.
It might be so that someone among them might have already taken the knowledge.
और कोई ने ज्ञान लेने वाला हो.
And the other is yet to take the knowledge.
दोनों बातें हो सकती हैं. माने ज्ञान ले सकते हैं.
Both the things are possible. It means that they can take knowledge.
अभी कोई मरेंगे तो भी वो तो पहले मर चुके.
If someone dies now, even then, those have died earlier.
अभी कोई मरेंगे तो भी 10 वर्ष अभी बाकी है.
इफ somebody dies now, still 10 years are remaining.
किस बात में?
फॉर वॉट?
किस बात में बाकी है?
फॉर वॉट इज इट रिमेनिंग?
अरे सन 67 की वाणी, 67 की वाणी है और बोला 10 वर्ष अभी बाकी है. किस बात के बाकी है? हैं?
अरे दिस वाणी इज ऑफ ईयर 67 एंड इट वॉज सेड दैट 10 ईयर्स आर रिमेनिंग. फॉर वॉट आर दे रिमेनिंग?
पुरुषार्थ करने के लिए. अभी कोई मरेंगे तो जन्म लेंगे ना.
फॉर डूइंग एफर्ट. एट प्रेजेंट इफ समवन डाइज दे विल टेक बर्थ, वोंट दे?
सन 67 में भी अगर कोई 67-68 में मरेंगे तो जन्म तो लेंगे ना.
इफ समवन डाइज इवन इन द ईयर 67-68 दे विल टेक बर्थ, वोंट दे?
तो जन्म लेंगे तो भी अभी कितने वर्ष बाकी हैं?
इफ दे टेक बर्थ देन हाउ मेनी ईयर्स आर रिमेनिंग?
9-10 वर्ष बाकी हैं. किस बात के?
9-10 ईयर्स आर रिमेनिंग. फॉर व्हाट?
पुरुषार्थ करने के. किस बात का पुरुषार्थ करने के?
फॉर डूइंग एफर्ट. डूइंग एफर्ट फॉर व्हाट?
10 वर्ष बाकी है माना कौन से सन तक की बात बताई?
10 ईयर्स आर रिमेनिंग मीन्स अंटिल विच ईयर वॉज इट मेंशनड?
सन? अरे सन 67 में 9-10 वर्ष बाकी है तो कौन से सन तक की लिमिट बताई?
अरे इन द ईयर 67 इफ 9-10 ईयर्स आर रिमेनिंग देन अंटिल विच ईयर वॉज द लिमिट मेंशनड?
76 तक की लिमिट बताई.
अंटिल द ईयर 76 द लिमिट वॉज टोल्ड.
माने सन 76 तक अभी भी पुरुषार्थ करने का टाइम उनके लिए बाकी है.
इट मीन्स दैट अंटिल द ईयर 76 इवन नाउ देयर इज टाइम फॉर देम टू डू एफर्ट.
किस बात का पुरुषार्थ?
डूइंग एफर्ट फॉर व्हाट?
है किस बात का पुरुषार्थ करने का टाइम अभी 9-10 वर्ष बाकी है?
फॉर डूइंग व्हाट एफर्ट इज द टाइम ऑफ 9-10 ईयर्स रिमेनिंग?
हाँ विश्व का बादशाह अथवा नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ अभी भी 9-10 वर्ष बाकी है.
यस फॉर डूइंग द एफर्ट फॉर बिकमिंग द वर्ल्ड एम्परर और बिकमिंग नारायण फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मैन दैट इज नर इवन नाउ 9-10 ईयर्स आर रिमेनिंग.
माना बाबा जिन बच्चों को सामने रख कर के बात कर रहे थे.
इट मीन्स द चिल्ड्रन होम बाबा हैड प्लेस्ड इन फ्रंट व्हाइल स्पीकिंग.
बाबा का लक्ष्य कौन से पुरुषार्थ की तरफ था?
टूवर्ड्स विच एफर्ट वॉज बाबा सेम?
नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले बच्चों की तरफ था.
इट वॉज टूवर्ड्स दोज चिल्ड्रन हु वर टू बिकम नारायण फ्रॉम नर दैट इज अ मैन एंड लक्ष्मी फ्रॉम नारी दैट इज अ वुमन.
उन्हीं बच्चों को याद किया.
जस्ट दोज चिल्ड्रन वर रिमेम्बर्ड.
जिन बच्चों में से एक ने 42 में शरीर छोड़ा.
अमंग दोज चिल्ड्रन वन लेफ्ट द बॉडी इन द ईयर 42
और एक ने 40-47 में शरीर छोड़ा.
एंड द अदर लेफ्ट द बॉडी इन द ईयर 46-47.
उस समय वो बच्चे कहीं न कहीं दुनिया में होंगे.
एट दैट टाइम दोज चिल्ड्रन माइट बी समवेयर इन द वर्ल्ड.
या हो सकता है किसी ने ज्ञान ले लिया हो और कोई ज्ञान लेने वाला हो.
और इट माइट बी पॉसिबल दैट वन ऑफ देम वुड हैव टेकन द नॉलेज एंड अनदर वॉज गोइंग टू टेक द नॉलेज.
तो बाबा ने इशारा किया कि ज्ञान भी ले सकते हैं.
सो बाबा गेव अ क्लू दैट दे कैन टेक द नॉलेज टू.
और ज्ञान लेकर के वो 9-10 वर्ष में पुरुषार्थ करके विश्व की बादशाही का पद प्राप्त भी कर सकते हैं.
Having taken the knowledge, they can do effort within 9-10 years and also attain the position of the world emperor.
9-10 वर्ष अभी भी बाकी हैं. माने किस बात के बाकी हैं?
9-10 years are remaining even now means for what is it remaining?
नारायण बनने के, नर से नारायण बनने के लिए बाकी है 9-10 वर्ष.
For becoming Narayan, that is for becoming Narayan from Nar, 9-10 years are remaining.
यह विश्व का बादशाह बनने के लिए अभी भी पुरुषार्थ का टाइम बाकी है.
और इवन नाउ द टाइम ऑफ मेकिंग एफर्ट टू बिकम द वर्ल्ड एम्परर इज रिमेनिंग.
बोला अभी कोई आवेंगे अब ज्ञान तो ले नहीं सकेंगे. ये क्या बोल दिया?
Then it was said, if anybody comes now, they will not be able to take the knowledge. What was said?
ये दोनों वाक्य साथ साथ बोले, अभी कोई मरेंगे तो बाकी है ना 10 वर्ष.
Both the sentences were spoken together. If at all somebody dies now, still 10 years are remaining, aren't they?
फिर बोला, आप तो ज्ञान ले नहीं सकेंगे, नहीं ले सकेंगे.
Then it was said, now they will not be able to take the knowledge. Won't they be able to take the knowledge?
हैं? सन 67 में वो ज्ञान नहीं ले सकेंगे.
Won't they be able to take the knowledge in the year 67?
अब जो शरीर छोड़ेंगे.
That is, those who leave their body now.
हाँ, सन 67 के बाद जो शरीर छोड़ेंगे, वो 5, 7, 8, 9 वर्ष तो उनको बड़े होने में ही लगेंगे, समझदार बनने में.
Those who leave their bodies after the year 67, it will take 5, 7, 8, 9 years for them to grow up and be mature.
तो समझदार जब तक नहीं बनेंगे, तो विश्व की बादशाही का वर्षा कैसे लेंगे?
Until and unless they become matured, how will they take the inheritance of the world emperorship?
वाणी में बोला ना, ये लक्ष्मी नारायण बुद्धू है.
It was said in the Vani, wasn't it? These Lakshmi Narayan are stupid.
फिर दूसरी वाणी में बोला, ये लक्ष्मी नारायण समझदार है, तब तो विश्व के मालिक हैं, बनते हैं.
And in another Vani, it was said, these Lakshmi Narayan are intelligent. That is why they become the masters of the world.
तो बुद्धू कौन है और समझदार कौन है?
So, who are the stupid ones and who are the intelligent ones?
जो सत्युग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो बुद्धू.
Those who will become Lakshmi Narayan in the golden age are the stupid ones.
और जो संगम युग में नरसिंह नारायण बनेंगे, वो समझदार हुए.
And those who will become Narayan from Nar in the confluence age are the intelligent ones.
तो अभी जो सन 67 के बाद 9-10 वर्ष पड़े हुए हैं.
Therefore, now after the year 67, in the 9-10 years that remain,
उसमें कोई बच्चा जन्म लेकर के दोबारा आएगा.
If any child takes birth and comes again,
तो समझदार की लिस्ट में होगा या बुद्धू की लिस्ट में होगा?
Then will he be in the list of the intelligent ones? Or will he be in the list of the stupid ones?
जन्म लेकर के अभी दोबारा आएगा 67 के बाद.
If he takes birth and if he comes again after the year 67,
तो बुद्धू की लिस्ट में गिना जाएगा या ज्ञानी की लिस्ट में गिना जाएगा?
Will he be counted in the list of the stupid ones or will he be counted in the list of the knowledgeable ones?
तो बुद्धू होगा, क्योंकि 9-10 वर्ष में तो इंद्रियां उतनी मजबूत और दिमाग उतना परिपक्व नहीं बनता है.
He will be a stupid one because in a period of 9-10 years the organs are not that strong and the brain does not become so much mature.
तो जब दिमाग ही परिपक्व नहीं बनेगा तो विश्व का बादशाह कैसे बनेगा?
So if the brain itself is not matured, then how can he become the world emperor?
विश्व का बादशाह बनने के लिए तो बड़ी भारी समझदारी चाहिए.
To become the world emperor, he needs to have a lot of intelligence.
तो इशारा दे दिया कि अब आने वाले बच्चे जो शरीर छोड़ करके दोबारा आएंगे, उनके लिए तो गुंजाइश नहीं है.
Hence, a clue was given that for those children who are yet to come now, those who will leave their bodies and come again, for them there was no margin.
लेकिन जो पहले शरीर छोड़ गए हैं, यज्ञ के आदि में.
But those who have left their bodies earlier in the beginning of the yagya,
और अब वो बड़े होकर के 20-25 वर्ष के होकर के यज्ञ में दोबारा ज्ञान में आवेंगे.
And now if they on growing up to 20 to 25 years come again in yagya and in gyan,
तो हो सकता है गैलप करके 9-10 वर्षों में पीछे चले जाएं.
Then there is a possibility that they can gallop within 9-10 years and go fast.
यथार्थ बाप को याद भी नहीं कर सकेंगे जो अभी शरीर छोड़ेंगे.
Those who will leave the body now will not be able to remember the father in the accurate way.
माने सन 67 के बाद जो शरीर छोड़ेंगे, वो यथार्थ रीति बाप को याद नहीं कर सकेंगे. यथार्थ रीति.
It means that those who leave their body after year 67 will not be able to remember the father in the accurate way. In the accurate way.
माना सन 76 में तो बाप का पार्ट खुलेगा.
It means that in the year 76, the part of the father will be revealed.
बाप का स्वरूप पता चलेगा कि ये बाप है, ये माँ है, है ना?
The form of the father will be known, that this is the father and this is the mother, won't it?
तो जब उनको ये बुद्धि में बैठेगा ही नहीं कि बाप का स्वरूप असली कौन सा है, तो याद कितना टाइम करेंगे?
So, when it won't sit in their intellect, which the real form of the father is, then how long will they remember?
याद करने का मार्जिन रहता ही नहीं.
There will be no margin at all to remember.
बाकी उन बच्चों के लिए याद करने का मार्जिन है. किन बच्चों के लिए?
But for those children, there is a margin for remembrance. For which children?
जिन्होंने 20-25 वर्ष से पहले शरीर छोड़ा है.
For those who left their bodies 20 to 25 years back.
तो जो अभी शरीर छोड़ेंगे, वो करके इतना कहेंगे कि शिव बाबा को याद करो.
Those who will leave their bodies now, they at all would say to remember Shiv Baba.
उनमें भी कोई फुर्त बच्चा होगा, तो 84 के चक्कर को तो समझ जाएगा.
And among them, if there was some smart child, he would understand the cycle of 84 births at the least.
क्या? 84 के चक्कर को तो समझ जाएगा. बाकी विश्व का मालिक बने, वो नहीं हो सकता है.
What? He would understand the cycle of 84 at the least, but as for the rest, to become the master of the world, that is not possible.
अभी बच्चे जानते हैं, हम बाप को याद करने से तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे.
Now the children know that by remembering the father, we will become completely pure from impure.
किसको याद करने से? बाप को याद करने से. ये नहीं कहा माँ को याद करने से.
By remembering whom? By remembering the father. It was not said. By remembering the mother.
किसको याद करने से? बाप को याद करने से. बाप कहते हैं मुझे याद करो.
By remembering whom? By remembering the father. The father says, remember me.
कौन कहते हैं? बाप कहते हैं. कहते कैसे हैं?
Who says? Somebody replied, the father says. The father says, how does he say it?
कहाँ कहते हैं? संसार सर्व कैसे कहेंगे? हैं?
Where does he say it? How can he say it in the year 67?
हाँ, उस समय तो माँ के रूप में है, तो फिर बाप कहते हैं, ये बात कैसे साबित होगी? हैं?
Yes, at that time, when it was the form of the mother, how will it be proved that the father says?
बाप कहते हैं, माने मुख से ही कहेंगे ना?
The father says, means that he will say it through the mouth only, won't he?
अब मुख से कहेंगे कि मुझे याद करो, तो अम्मा को याद करो कि बाप को याद करो, क्या कहेंगे?
And when he says through the mouth, remember me, then what will he say? Remember the mother or remember the father?
हैं? बाप याद? उस समय 67 में, 67 में बाप था, बाप के रूप में.
Someone said something. Will he say to remember the father? At that time, in the year 67, was the father present in the form of the father?
नहीं था, फिर याद कैसे करो?
He wasn't in the form of the father. Then how to remember him?
माने ये कि आज में कोई स्वरूप था तो ना? हाँ.
It means that at the beginning of the yagya, there was some personality, wasn't there? Yes.
जो यज्ञ के आज में स्वरूप था, वो स्वरूप के लिए भी ये बात लागू होती है.
Also for the personality which was there at the beginning of the yagya, this applies that
कि मेरे स्वरूप को याद करो जिसमें सुप्रीम सोल बाप मुकर रूप से प्रवेश करता है.
Remember my personality in whom the supreme soul father enters in a permanent form.
तो क्या होगा? याद करो. बाकी यह ज्ञान नहीं है, याद करो.
So what will happen? Do remember. But this is not the knowledge. Do remember.
16 फरवरी 67 की वाणी का दूसरा पेज. ये तो बाप डायरेक्शन देते हैं मुझे याद करो.
The second page of the vani dated 16 February 67. The father gives us this direction. Remember me.
ये कोई ज्ञान नहीं है. इनको योग कहा जाता है.
This is not knowledge. This is called yoga.
इनको याद कहा जाता है. ज्ञान है सृष्टि चक्र का.
दिस इज कॉल्ड रिमेम्बरेंस. द नॉलेज इज अबाउट द वर्ल्ड साइकिल दैट इज सृष्टि चक्र.
कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इस बात की नॉलेज है.
एज टू हाउ द वर्ल्ड साइकिल रोटेट्स द नॉलेज इज अबाउट दिस.
और योग, योग अलग है और ज्ञान अलग है.
एंड वॉट अबाउट योग. योग इज डिफरेंट एंड नॉलेज इज डिफरेंट.
बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना. वो लौकिक बाप होता है और ये है पारलौकिक बाप.
इट इज द ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन टू रिमेम्बर द फादर. दैट वन इज द वर्ल्डली फादर एंड दिस वन इज द फादर फ्रॉम द वर्ल्ड बियॉन्ड दैट इज पारलौकिक फादर.
पारलौकिक माने इस लोक का नहीं है. कौन से लोक का है? पारलोक.
पारलौकिक मीन्स दैट ही डजंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड. देन फ्रॉम विच वर्ल्ड इज ही? ही इज फ्रॉम द वर्ल्ड बियॉन्ड. पारलोक.
पारलोक. पारलोक माने क्या?
पारलोक. व्हाट डज इट मीन बाय पारलोक?
इस लौकिक दुनिया के पार.
इट इज बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड.
उस लौकिक दुनिया के पार कौन कौन से लोक है?
विच वर्ल्ड आर देयर बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड? समवन चेक द सटल वर्ल्ड.
इस लौकिक दुनिया के पार कौन कौन से लोक हैं?
विच वर्ल्ड आर बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड?
सूक्ष्म लोकों में तो कोई बाप होता ही नहीं.
देयर इज नो फादर एट ऑल इन द सटल वर्ल्ड.
इस लौकिक दुनिया के पार एक तो स्वर्ग लोक है.
बियॉन्ड दिस लौकिक वर्ल्ड वन इज द पैराडाइज.
वो भी तो स्वर्ग लोक. इस लौकिक दुनिया विषय विकारी दुनिया की पार ही तो है.
इवन दैट इज द पैराडाइज इज बियॉन्ड दिस लौकिक वर्ल्ड द विशियस वर्ल्ड इजंट इट.
इस पार है या उस पार है? उस पार है. तो वो भी तो पार लोक है.
इज इट ऑन दिस साइड और ऑन दैट साइड? इट इज ऑन दैट साइड. देन दैट टू इज पार लोक.
इस दुनिया के पार है. ये है पारलौकिक बाप.
इट इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड. दिस वन इज द पारलौकिक फादर.
तो इस दुनिया के जो पार स्वर्णिम दुनिया होगी उसमें पारलौकिक बाप होगा या नहीं होगा?
देन इन द गोल्डन वर्ल्ड विच इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड विल द पारलौकिक फादर बी देयर और नॉट?
है नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? है होगा?
Won't he be there? Will he be there or not? Will he be there? अरे someone said something.
तो शालू बहन तो कह रही कि स्थापना करके चले जाएंगे.
शालू बहन अ पीवी के सिस्टर इज सेइंग आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ही विल गो अवे.
इनकी की बुद्धि में निराकारी बाप आया और ये भी कह रहे नहीं होगा.
द इनकॉर्पोरियल फादर केम इन हर इंटेलेक्ट एंड दिस वन हियर टू इज सेइंग दैट ही विल नॉट बी देयर.
माने निराकारी बाप आया या साकारी बाप आया?
इट मीन्स डिड द इनकॉर्पोरियल फादर कम और डिड द कॉर्पोरियल फादर कम इन द इंटेलेक्ट?
36 तो चले जाएंगे ना, उससे पहले होंगे. 36
हम स्वर्णिम दुनिया की बात कर रहे हैं.
समवन सेड ही विल गो इन द ईयर 2036-37 वोंट ही? वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्डन वर्ल्ड.
साकार में होंगे उससे.
हम स्वर्णिम दुनिया की बात कर रहे हैं.
वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्डन वर्ल्ड.
स्वर्णिम दुनिया सन 36 में 35 में होगी या नहीं होगी?
विल द गोल्डन वर्ल्ड बी देयर इन द ईयर 36-35 दैट इज 2035-36 और विल इट नॉट?
होगी ना. तो पारलोक ही होगा ना.
इट विल बी देयर वोंट इट? देयरफॉर इट विल बी पारलोक वोंट इट?
तो पारलोक में बाप मौजूद होगा या नहीं होगा?
सो विल द फादर बी देयर इन द पारलोक और नॉट?
होगा ना. वो ही बात बताई.
ही विल बी देयर वोंट ही? द सेम थिंग वॉज सेड.
वो है लौकिक बाप और ये है पारलौकिक बाप.
दैट इज द लौकिक फादर एंड दिस वन इज द पारलौकिक फादर.
मुरली में ये भी तो बोला है इस दुनिया में सदाकाल स्थायी चीज कोई होती नहीं.
इन द मुरली इट हैज ऑल्सो बीन सेड दैट नथिंग इज एवरलास्टिंग इन दिस वर्ल्ड.
सदाकाल स्थायी तो एक शिव बाबा ही है.
ओनली वन शिव बाबा इज एवरलास्टिंग.
तो 5000 वर्ष की सृष्टि चक्र में सदाकाल स्थाई है.
सो इज ही एवरलास्टिंग इन द वर्ल्ड साइकिल ऑफ 5000 इयर्स.
शिव सुप्रीम सोल स्थाई है या शिव बाबा स्थाई है?
इज शिव सुप्रीम सोल एवरलास्टिंग और इज शिव बाबा एवरलास्टिंग?
बाबा तो कहा जाता है साकार निराकार की मेल को.
बाबा इज सेट फॉर द यूनियन ऑफ द कॉर्पोरियल वन एंड द इनकॉर्पोरियल वन.
तो इस सृष्टि पर सदाकाल स्थाई कौन होगा?
सो देन हु विल बी एवरलास्टिंग इन दिस वर्ल्ड?
शिव बाबा स्थाई होगा और शिव बाप इस सृष्टि पर स्थाई नहीं होता.
शिव बाबा विल बी एवरलास्टिंग एंड द फादर शिव इज नॉट एवरलास्टिंग इन दिस वर्ल्ड.
वो तो सिर्फ संगम युग में आता है और काम करके वापस चला जाता है. वो साक्षी हो जाता है.
He comes only in the conference age and goes back after finishing the task. He that is supreme soul becomes a witness, that is sakshi.
और वो साथी हो जाता है.
And he that is the permanent chariot becomes a companion.
रामकृष्ण की आत्माएं साथी हो जाएंगी.
The souls of Ram and Krishna will become companions.
और शिव बाप साक्षी होकर के 5000 साल फिर ऊपर वाले पार लोगों में फिर बैठेंगे.
एंड द फादर शिव विल बिकम अ विटनेस एंड अगेन सेट अबाउ इन द पार लोक फॉर 5000 इयर्स.
बाप कहते हैं मुझे याद करो.
द फादर सेज रिमेम्बर मी.
फिर वो ही बात. कौन से बाप कहते हैं?
इट इज द सेम सब्जेक्ट अगेन. विच फादर इज सेइंग दिस?
सुप्रीम सोल कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे.
Does the Supreme Soul say, remember me? Because you will become like the one you remember.
अगर Supreme Soul को ही याद किया वो ही बुद्धि में बैठा रहता है.
If you remember the Supreme Soul alone, if he alone sits in the intellect,
साकार याद आता ही नहीं तो फिर ऊपर बैठना पड़ेगा थोड़ा बहुत.
If the remembrance of the corporeal one does not come at all, then you will have to sit up in the supreme abode for some period of time.
Nahi nahi nahi.
Somebody said no. No no no.
Aur agar mujhe yaad karo, baap kehte hain.
And if the father says remember me,
to mukh se hi keh rahe honge na.
So obviously he might be saying through the mouth. Mightn't he?
मुख से कहने वाला जो बाप है, अगर उस मुख से कहने वाले बाप को हम याद करेंगे जो कहते हैं मुझे याद करो.
इफ वी रिमेम्बर दैट फादर हु सेज थ्रू द माउथ रिमेम्बर मी,
तो हम 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में आवेंगे.
देन वी विल कम इन द वर्ल्ड साइकिल ऑफ 5000 इयर्स.
ऑल राउंड पार्ट बजावेंगे.
वी विल प्ले एन ऑल राउंड पार्ट.
और सूर्यवंशियों की लिस्ट में भी आवेंगे.
And we will come in the list of the Suryavanshis as well, that is the ones of the Sun dynasty.
Hamara baap Vishu ka malik banega, to hum bacche bhi, hum bhi Vishu ke malik banega.
Our father will become the master of the world, then we children will also become the masters of the world.
Vaha yatha raja, tatha praja sab ek saman hote hai. Kya?
As the king, so the subjects. All are alike there. What?
बाप मालिक होगा तो बच्चे भी मालिक होंगे.
If the father is a master, then the children will be masters as well.
तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई.
Therefore, the father says, remember me. So knowledge is a different thing.
और याद अलग चीज हो गई.
And the remembrance is a different thing.
बच्चों को कहना पड़ता है क्या?
Do the children have to be told?
जो बच्चे होते हैं, असल में जो बच्चे होते हैं उनको कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो?
नहीं.
Do the real children need to be told? Remember the father?
हाँ?
भूलते ही नहीं.
तो क्यों कहते हैं बार बार?
करते नहीं
है. इसका मतलब बच्चे है ही नहीं.
Then why is he repeatedly saying that? Someone said because they don't remember. They don't remember. This means that they are not the children.
है? माना सन 67 तक जो भी बच्चे सामने बैठे थे.
It means that up until the year 67, whichever children were sitting in front.
वो बाबा के सूर्यवंशी बच्चे थे या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी, क्रिश्चियन वंशी आदि आदि बच्चे थे?
वेर दे बाबा सूर्यवंशी चिल्ड्रन और वेर दे चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी एंड क्रिश्चियन वंशी चिल्ड्रन एक्सेट्रा?
है सूर्यवंशी बच्चे थे उस समय? सूर्यवंशी बच्चे तो यज्ञ के आदि में ही चले गए।
वेर दे सूर्यवंशी चिल्ड्रन प्रेजेंट एट दैट टाइम? The Suryavanshi children went away in the early years of the Yajna itself.
उन बच्चों को तो इमर्ज करके बोलते हैं।
Baba emerges those children and speaks to them.
सूर्यवंशी बच्चे जो बाप का वर्षा डायरेक्ट लेते हैं वो तो यज्ञ के आदि में ही चले गए।
The Suryavanshi children who directly take the father's inheritance went away in the beginning of Yajna.
और जब ब्रह्मा बाबा मम्मा शरीर छोड़ देते हैं,
and when Brahma Baba and Mamma leave their bodies,
तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद तो चंद्रवंशी आत्मा आ जाती है यज्ञ में।
After Mamma left her body, the Chandravanshi soul comes in the Yajna.
जो नारी से लक्ष्मी का पद पाने वाली होती है, जिसके लिए बोला 20 साल हो गए होंगे, 20 वर्ष के हो गए होंगे।
The one who is going to attain the position of Lakshmi from a woman. For whom it was said she would be of 20 years now.
और जो सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है,
and the soul who is going to play the part in the form of the sun,
वो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में आती है,
comes into the knowledge after Brahma Baba left his body.
तो बोला बच्चों को कहना पड़ता है कि बाप को याद करो।
Therefore it was said, should the children be told remember the father?
ऑटोमेटिक याद करते हैं कि कहने से याद करते हैं?
डू दे रिमेम्बर ऑटोमेटिकली और डू दे रिमेम्बर आफ्टर बीइंग टोल्ड?
जिनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है, हम इस बाप के बच्चे हैं जो हमें विश्व की मालिकाना देने वाला है।
द वंस इन हूज इंटेलेक्ट इट इज फिक्स्ड दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ दिस फादर हु इज गोइंग टू गिव अस द वर्ल्ड सॉवरेनिटी,
तो उनको तो ऑटोमेटिक याद आएगा या उनसे बार बार कहना पड़ेगा मुझे याद करो?
देन will they automatically remember or will they have to be repeatedly reminded remember me?
याद ही रहता है, फिर ये मुरली में बार बार क्यों बोलते हैं?
Somebody said they do remember, then why is Baba repeatedly saying so in the murli?
हाँ, उस समय जो बच्चे सामने बैठे थे वो बच्चे ऐसे ही थे, कैसे?
Someone said something. Yes, the children who were sitting in front at that time were like that. Like what?
क्यों उनको बार बार कहना पड़ता था?
They were such that they had to be told repeatedly.
और बार बार कहने के बावजूद ही उनकी बुद्धि में ये नहीं आता था कि हम कौन से बाप को याद करें।
Despite repeatedly saying it, it didn't used to come into their intellect as to which father they should remember.
तो उन बच्चों में और तुम बच्चों में, उन बच्चों की याद में और तुम बच्चों की याद में कितना फर्क हो गया?
Therefore, there is a lot of difference between those children and you children, between the remembrance of those children and you children.
तुमको कहने की दरकार नहीं है क्या? मुझे याद करो।
There is no need to tell you. What? Remember me.
तुम्हारे सामने जो भी बाप होगा, जो तुम्हारी बुद्धि में निश्चय बुद्धि बने होगे, जिस बाप के लिए,
whosoever is the father in front of you, in respect of whom you would have a faithful intellect.
वो तुमसे बार बार कहता है मुझे याद करो? क्यों?
Does he say repeatedly remember me? Someone said no. Why not?
ब्रह्मा के द्वारा बार बार कहता था मुझे याद करो।
He said repeatedly through Brahma, remember me.
ये बच्चे ब्रह्मा बाबा लटके हुए थे
इसलिए। नहीं, वो बच्चे दूसरे बाप के बच्चे थे।
Someone said something. No, those children were the children of some other father.
कोई चंद्रवंशी बाप के, चंद्रमा बाप के बच्चे थे।
सम वेर द चिल्ड्रन ऑफ द चंद्रवंशी फादर।
कोई इब्राहिम बाप के बच्चे थे, कोई क्राइस्ट बाप के बच्चे थे।
सम वेर द चिल्ड्रन ऑफ फादर इब्राहिम एंड सम वेर द चिल्ड्रन ऑफ फादर क्राइस्ट।
उनकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज जल्दी बैठती नहीं।
द एडवांस नॉलेज डजंट फिट इन देयर इंटेलेक्ट क्विकली।
जो असली नॉलेज है, परिपक्व नॉलेज है, वो उन बच्चों की बुद्धि में बैठने वाली अभी भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठती है।
द रियल नॉलेज, द मैच्योर्ड नॉलेज डजंट फिट इन दोज चिल्ड्रन्स इंटेलेक्ट इवन नाउ।
इसलिए बोला कि बच्चों को कहना नहीं पड़ता है कि बाप को याद करो.
That is why it was said, the children need not be told to remember the father.
बच्चे जो होते हैं वो ऑटोमेटिक बाप को याद करते हैं.
The children automatically remember the father.
और सन 76 के बाद जो भी प्रैक्टिकल में बाप का पार्ट बजाने वाला होगा.
And after the year 76, whoever will be the personality that is going to play the practical part of the father,
वो भी बार बार कहता नहीं होगा. बार बार तो छोड़ो, एक बार भी नहीं कहता होगा कि मुझे याद करो.
Even he might not be saying repeatedly, leave alone about repetition, he might not be saying even once, remember me.
कभी भी नहीं कहता होगा मुझे, ये ही नहीं कहेगा मैं तुम्हारा बाप हूँ.
He would never be saying remember me. He will not even say I am your father.
जो बच्चे होंगे वो ऑटोमेटिक पहचान लेंगे कि ये मेरा बाप है.
The children will automatically recognize that he is their father.
लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है.
The lokic father remains in the memory right from the birth.
माँ भी याद रहती है और बाप भी याद रहता है.
The mother remains in the memory and the father remains in the memory too.
यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है.
Here, the children have to be reminded of the father.
बाबा बहुत परेशान हो रहे हैं.
बाबा is becoming very much troubled.
यहाँ माने कहाँ?
Here means where.
यहाँ माने कहाँ याद दिलानी पड़ती है?
Here meaning where they have to be reminded.
हैं? यहाँ दूल्हावाड़ी में?
Is it here at दूल्हावाड़ी?
यहाँ याद नहीं दिलानी पड़ती है. कहाँ की बात बताई?
Here they need not to be reminded. Which place is it about?
सन 67 की बात बताई माउंट आबू की.
This is about the year 67 at Mount Abu.
Mount Abu में बाबा के सामने जो बच्चे बैठे थे सन 67 में, उस समय की बात बताई.
This is about the time when the children were sitting in front of Baba in the year 67 at Mount Abu.
कि यहाँ बच्चों को बार बार याद दिलानी पड़ती है.
That there the children had to be reminded of the father repeatedly.
और तो भी उनको बाप की याद नहीं आती.
Still they do not remember the father.
या तो ब्रह्मा बाबा को याद करेंगे, या तो बिंदी को याद करेंगे.
Otherwise they will remember Brahma Baba or they will remember the point Bindi.
और इतनी अकल कहाँ है कि धर्म पिताएं बनने वाले हम लोगों में से कौन कौन है?
Where do they have so much intelligence to know who among us is going to become a religious father?
जब अपनी आत्मा का ही पता नहीं चला, अपने बाप का ही पता नहीं चला.
When they didn't know about their own soul, when they didn't know about their father.
तो फिर और धर्म पिताओं की तो पहचानने की तो बात.
दादी दीदी को याद करते हैं.
दादी दीदी तो अब हुए जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया.
Then the question of identifying the other religious fathers, someone said something. The दादी दीदी are there now after Brahma Baba left his body.
ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद दादी दीदी दादा आए.
Only after Brahma Baba left his body, the दादी दीदी दादास came.
उनको याद करना शुरू हुआ, पहले थोड़े याद करती थी कोई दादी दीदी.
They started remembering them. Before that, no one used to remember the दादीस and दीदीस.
ज्यादा से ज्यादा मम्मा याद आती थी या ब्रह्मा बाबा याद आते थे.
At the most, mamma was remembered or Brahma Baba was remembered.
इसलिए बाबा उस समय भी डोरापा मारते थे.
That is why, even at that time, Baba used to complain sarcastically.
कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, सुबह कोई पूछता ही नहीं.
Some are mamma's followers, some are baba's followers, and nobody cares for Shiv Baba.
मुरली ऐसे डोरापा दिया है.
Such sarcasm, that is durapa, has been given in the Murli.
अरे शिव बाबा को कोई पूछे तब नहीं, जब सही परिचय पे बुद्धि में बैठे.
अरे anybody will care for Shiv Baba only when the exact identification fits in the intellect.
इसमें मेहनत लगती है. क्या? बाप की याद में मेहनत लगती है.
This requires effort. What? Remembrance of the father requires effort.
ज्ञान में इतनी मेहनत नहीं है. ज्ञान समझना और समझाना बहुत सहज है.
There is no such effort involved in knowledge. Understanding and explaining the knowledge is very easy.
लेकिन याद में मेहनत है.
But it takes effort to remember.
अपने को आत्मा समझ है, बाप को याद करना है.
Considering yourselves as a soul, you must remember the father.
अपने को आत्मा समझ है, बाप को याद करना है. अरे
Hey, considering yourselves as a soul, you must remember the father. अरे
चलो आत्मा समझ लिया. कोई आर्य समाज धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है.
All right, you considered yourselves as a soul. If there is a soul who is going to be converted into the Arya Samaj religion,
उसने समझ लिया कि हम आत्मा है.
He has considered himself a soul.
उसने समझ लिया कि हम आत्मा है, तो कौन से बाप को याद करेगी वो.
He has considered himself a soul. Then which father will he remember?
वो अपने धर्म पिता को जल्दी याद कर लेगी. शिव बाप उसकी बुद्धि में जल्दी बैठने वाला नहीं है.
He will remember his religious father quickly. Father Shiv is not going to sit in his intellect quickly.
क्योंकि वो अधूरी आत्मा है. 84 जन्म लेने वाली आत्मा है या कम जन्म लेने वाली आत्मा है.
It is because he is an incomplete soul. Is he a soul who will take 84 births or lesser births?
जो आर्य समाज में कन्वर्ट होने वाली आत्मा होगी उसके कितने जन्म कम हो जाएंगे.
How many births will be less for the soul who will convert into Arya Samaj?
अरे जल्दी बताओ.
अरे say quickly.
है 7 जन्म कम हो जाएंगे.
7 births will be less.
तो ऑल राउंड पार्ट तो उसकी बुद्धि में बैठा ही नहीं.
Then the all round part did not fix in his intellect at all.
तो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्मा हुई या पक्की 84 जन्म लेने वाली आत्मा हुई.
So is he an incomplete soul who converts or is he a complete soul who takes 84 births?
कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्मा हुई, इसलिए बोला अपन को पहले आत्मा समझो.
He is an incomplete soul who converts. That is why it was said, first consider yourself a soul.
पक्का पक्का आत्मा समझो कि मैं पक्की 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूँ.
Consider yourself a complete soul. I am a complete soul who takes full 84 births.
मैं खंडित आत्मा
नहीं.
हाँ, कम जन्म लेने वाली आत्मा नहीं हूँ.
I am not an incomplete soul who takes lesser births.
ये बहुत मेहनत का काम है.
This is a very strenuous task.
जो असली मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ, उस स्वरूप को पहचान करके उसे याद करना.
To recognize what I am, how I am, and in which form I am playing my part, and then to remember that form.
ये बहुत मेहनत कौन से बच्चे उठाएंगे?
Which children will take up this strenuous task?
जो पूरे 84 जन्म लेने वाले आत्मा बच्चे होंगे वो ही पहचानेंगे, वो ही इस ज्ञान को उठाएंगे.
Those souls, the children who take complete 84 births, only they will recognize him and take up this knowledge.
बहुत मेहनत का काम है. तो बाबा कहते हैं याद में ठहर नहीं सकते हैं.
It is very strenuous task. So Baba says they cannot remain in remembrance.
अभी भी कोई कोई ऐसे हैं जो कहते हैं.
Even now, there are some who say with wonder.
साकार में निराकार बिंदी को कैसे याद करें?
How can we remember the incorporeal point in the corporeal form?
हमें तो साकार याद ही नहीं आता.
We cannot remember the corporeal one at all.
या कहेंगे हमें तो बिंदी याद ही नहीं आती.
Or they will say, we cannot remember the point at all.
हमारी आत्मा बिंदी है, हमें ये ही याद करना मुश्किल है.
Our soul is a point. Even this is difficult for us to remember.
बिंदी को कैसे याद करें?
Then how can we remember the point?
सब बच्चे लिखते हैं, बाबा हम याद भूल जाते हैं.
All the children write, Baba, we forget to remember.
क्यों भूल जाते हैं?
Why do they forget?
ये तो सब बच्चे लिखते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ये न कहता हो कि हमें बाबा की याद भूल नहीं जाती है.
All the children write this. There is no such child who doesn't say, we forget to remember Baba.
चाहे 84 जन्म लेने वाले हों, चाहे कम जन्म लेने वाले हों.
Whether they are the ones who take 84 births or whether they are the ones who take lesser births.
याद सबको भूलती, क्यों भूलती है?
Everybody forgets to remember. Why do they forget?
है?
माया के कारण.
क्योंकि जो 63 जन्म लिए हैं.
It's because in the 63 births that they have taken.
उन 63 जन्मों में देह के अनेक संबंध जोड़े.
They have made numerous bodily relations.
और अनेकों व्यक्तियों के साथ जोड़े हैं.
And with numerous people.
और उनके साथ अटैचमेंट भी हुआ है बुद्धि का.
And the intellect also got attached to them.
तो शूटिंग पीरियड में वो याद आवेंगे या नहीं आवेंगे?
Then will they be remembered or not in the shooting period?
वो हिसाब किताब लेने आवेंगे कि नहीं आवेंगे?
Won't they come or not to clear off their accounts?
ए कहाँ जा रहे हो? पहले हमसे तो निपट लो.
Hey, where are you going? First clear off with us.
तो बार बार हमारी याद को आकर के डिस्टर्ब करते.
Therefore, they come repeatedly and disturb our remembrance.
ऐसे कोई नहीं कहते कि हम ज्ञान भूल जाते हैं.
Nobody says like this. We forget the knowledge.
ज्ञान तो बहुत सहज है, सबको याद हो जाता है.
The knowledge is very simple and everybody remembers it.
याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है.
Remembrance is not called knowledge.
इस याद की यात्रा में माया के तूफान बहुत आते हैं.
Lots of storms of माया come in this journey of remembrance.
बल ज्ञान में कोई बहुत तीखा हो.
Even though someone is very sharp in knowledge.
मुरली भी बहुत अच्छी चलाते हो.
And also narrates the मुरली very well.
परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट रखो, कितना समय याद करते हो?
But Baba asks, keep the chart of the remembrance. How long do you remember?
बाबा को याद का चार्ट यथार्थ बना करके दिखाओ.
Show to Baba the accurate chart of the remembrance.
पावन बनने के लिए याद ही मुख्य है.
To become pure, only remembrance is important.
क्या? किसकी याद?
What? Whose remembrance?
है? शिव बाबा की याद ही मुख्य है पावन बनने के लिए. क्यों?
Only the remembrance of Shiv Baba is important to become pure. Why?
अकेले शिव बाबा की आत्मा को याद करें, शिव बाबा को याद करें, तभी पावन बनेंगे.
Will we become pure if we remember only the soul of Shiv Baba, only Shiv Baba?
कोई और को याद कर ले तो पावन नहीं बनेंगे.
Won't we become pure if we remember somebody else?
हम ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं.
We remember ब्रह्मा बाबा.
बहुत सी ब्रह्मा कुमार ऐसे हैं जो ब्रह्मा बाबा में ज्योति बिंदु को याद करते हैं.
There are so many Brahma Kumaris and Brahma Kumars who remember a point of light in Brahma Baba.
नहीं, ब्रह्मा बाबा के खुद ही 84 जन्म पूरे नहीं होते.
Someone said something. No, Brahma Baba himself does not complete his 84 births.
वो पहले ही शरीर छोड़ गए.
He left his body well before.
उनके 50 वर्ष कम हो जाएंगे.
So his 50 years are reduced.
तो उनको याद करने की तो हमारी आत्मा भी 84 ज्यादा जन्म लेगी या कम जन्म लेगी?
If we remember him, will our soul take 84 births or less than that?
कम जन्म लेगी. पावन बनने में उतनी कमी रह गई.
It takes fewer births. There was a shortfall to that extent in becoming pure.
क्या? नई सृष्टि में बच्चा बन के पैदा होना पड़ेगा बुद्धू बन के.
What? In the new world, he will have to take birth as a child, as a stupid one.
तो आत्मा पतित की पतित रह जाएगी ना.
Therefore, the soul will remain impure, won't it?
तो बोला पावन बनने के लिए याद ही मुख्य है.
So it was said to become pure. Remembrance is important.
और किसकी याद? जो ever pure हो.
And whose remembrance? The one who is ever pure.
कौन है ever pure? है?
Who is ever pure?
शिव बाप या शिव बाबा?
Is it Father Shiv or Shiv Baba?
Shiv Baba ya Shiv Bapu?
Is it Shiv Baba or Father Shiv?
Shiv Bapu ever pure nahi hai? Hai?
Someone said something. Isn't Father Shiv ever pure?
Shiv Bapu ever pure kyun nahi?
Why isn't Father Shiv ever pure?
Shiv Bapu mane kya aur Baba mane kya?
What is meant by Father Shiv and what is meant by Shiv Baba?
शिव बाप माने ब्रह्मा बाबा. जय ले.
Someone said something. Father Shiv means Brahma Baba. Is it so? You have spoiled the whole thing.
शिव बाप माने ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप.
Father Shiv means a point of light, the father of all point-like souls.
And Shiv Baba? Mana, Shiv Baba ka wo rath.
And Shiv Baba means the chariot of Shiv Baba.
Jo aaj se lekar ke ant tak mukarrar rehta hai.
Who remains permanent from the beginning to the end.
Jab tak nayi duniya puri sthapan na ho jaye, tab tak wo wapas ja nahi sakta wo rath.
Until the new world is established completely, that chariot cannot go back.
Brahma Baba ka rath to beech mein hi wapas chala gaya.
The chariot of Brahma Baba left in the middle.
तो उसको मुकर्रर रथ नहीं कहेंगे.
So we will not call him the chosen chariot.
यज्ञ के आदि में भी उनका रथ मुकर्रर नहीं था.
In the beginning of the yagya too, his chariot was not the chosen chariot.
46-47 से जब से शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया.
Since year 46-47, from the time Shiv Baba entered him, that is Brahma Baba.
तब से मुरली चलाना शुरू किया. तब पता चला कि ये ब्रह्मा है.
From that time he started delivering murli and then it was known that he is Brahma.
Usse pehle to kisi ko ye bhi pata nahi tha ki ye Brahma hai.
Before that no one knew even this much that he is Brahma.
Tab 51-52 mein aakar ke Brahma Kumari Ishwari Vishwavidyalaya ki sthapana hui.
Then in 1951-52 there was the establishment of Brahma Kumari Ishwari Vishwavidyalaya.
Usse pehle to Om Mandali naam tha ki Brahma Kumari Vidyalaya naam tha.
Before that the name was Om Mandali. Or was it Brahma Kumari Vidyale?
Nahin, maalum hi nahin tha.
No, it was not at all known.
To bataya, pavan banne ke liye ek ki yaad zaruri hai.
So it was said, the remembrance of one is essential to become pure.
Wo ek kaun?
Who is that one?
Shiv Baba. Shiv Baba nahin, Brahma Baba nahin.
Shiv Baba, not Father Shiv, not Brahma Baba.
या कोई और धर्म पिता भी नहीं.
नॉट एनी अदर रिलीजियस फादर ईदर.
एक शिव बाबा.
वन शिव बाबा.
जिसके लिए कहते हैं एवर प्योर है.
फॉर हुम इट इज सेड ही इज एवर प्योर.
सभी देवताओं को कहेंगे पवित्र.
ऑल द डीटीज विल बी कॉल्ड एज प्योर.
और शिव बाबा को क्या कहेंगे? एवर प्योर. क्यों?
एंड वॉट वुड वी कॉल शिव बाबा? एवर प्योर. वाई?
देवताएं हैं पवित्र और शिव बाबा है एवर प्योर.
Deities are pure and Shiv Baba is ever pure.
Ever pavitra. Aise kyun?
Ever pavitra. Why is it so?
Hain? Shiv Baba ke liye ever pure kyun kehte hain? Devtaon ke liye pure kehte hain? Hain?
Why is it said that Shiv Baba is ever pure while for deities it is said that they are pure? Someone said something.
Janam nahi lete hain isliye. Fir to pavitra pavitra ki baat hi nahi.
Is it because he doesn't take birth?
Then the question of pure and impure doesn't arise at all.
Jo janam hi nahi leta, janam man ke chakra mein hi nahi aata, to wo sang ke rang mein bhi nahi aayega.
The one who doesn't take birth at all doesn't come in the cycle of life and death, will not even come in the color of the company of others.
Sang ke rang mein nahi aayega to patit banne ki baat paida hi nahi ho. Jiske patit banne ki hi baat nahi, wo pavan kaise bane?
If he does not come in the color of the company of others, then there is no question of becoming impure at all. When there is no question of him becoming impure, then how will he become pure?
Ever pure tab kaha jata hai jab sakar sharir mein reh karke.
Someone is said to be ever pure when while living in the corporeal body.
Anekon ke sang ke rang mein aate hue bhi.
And despite coming in the color of the company of many.
Uski atma mein क्या हो? पतित पना पनपने न पाए.
His soul should not become what? Should not nurture impurity.
और जो बच्चे हैं, जो भी आत्माएं हैं मुकर्रर रथधारी को छोड़ करके.
The other children, all the souls living aside the chosen chariot.
उनको संघ का रंग ज्यादा लगता है.
Are more colored by the company.
और मुकर्रर रथ को इतना संघ का रंग लग नहीं पाता भले वो कितनों के ही संपर्क संसर्ग में आता रहे.
एंड द चोजन चैरियट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपनी नो मैटर हाउ मेनी ही कम्स इन कॉन्टेक्ट विद.
कौन? शिव बाप.
हु? फादर शिव.
तो जो एवर प्योर होकर के पार्ट बजाता है, एवर पवित्रता का पार्ट बजाता है, उसको जो याद करेंगे वो जरूर पवित्र बनेंगे.
Therefore, the ones who will remember the one who plays the role being ever pure and plays the role of ever purity will definitely become pure.
राजाई पाने के लिए ज्ञान मुख्य है.
To attain kingship, knowledge is important.
मुख्य है पावन बनना. क्या?
It is important to become pure. What?
राजाई पाना ये कोई मुख्य बात नहीं है.
To obtain kingship is not the main thing.
द्वापर कलयुग में भी राजाएं होते हैं और राजाई पाते हैं.
There are kings in the copper and iron age too, and they too obtain the kingship.
त्रेता में भी राजाएं होंगे.
There will be kings in the silver age too.
सतयुग में भी कमकला वाले राजाएं होंगे, महाराजाएं होंगे ना?
There will be maharajas with less celestial degrees in the golden age as well, won't they?
लेकिन कमकला वाले होंगे बाद वाले.
But they will be of lesser celestial degrees who come later.
लेकिन अगर संपूर्ण पवित्र बनना है तो क्या करना है?
But if you want to become completely pure, then what should you do?
उस एक को याद करना पड़े.
You have to remember that one.
इसमें माया का विघ्न पड़ता है. शिव भगवान वाचे, याद में बच्चे बहुत कच्चे हैं.
In this, Maya creates obstacles. God Shiv speaks, children are very weak in remembrance.
क्या? ब्रह्मा बाबा उवाच नहीं?
What? It is not Brahma Baba who speaks.
कौन भगवान उवाच? शिव भगवान उवाच, याद में बच्चे बहुत कच्चे हैं.
Which God speaks? God Shiv speaks, the children are very weak in remembrance.
अच्छा? कैसे कैसे बच्चे? अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं.
Well, what kind of children? Very good children who narrate the murli in a very nice way.
परंतु याद में बिल्कुल कमजोर है.
But they are very weak in remembrance.
और यही याद की कमजोरी किस समय की बात है?
And this weakness in remembrance pertains to which time?
सन 67 की बात बताई.
It is about the year 67.
याद में बच्चे बहुत कमजोर हैं.
The children are very weak in remembrance.
और वो बहुत कमजोर होने के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा?
And what will be the result of being weak?
उस लिस्ट में ब्रह्मा बाबा आते हैं या नहीं आते हैं?
Does Brahma Baba come in that list or not?
है? अरे चुप हो गए? है?
अरे you are sitting quiet.
उस लिस्ट में जो बाबा बोले कि मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं.
In that list where Baba said that they impart murli in a very nice way.
ऐसे तो ब्रह्मा खुद मुरली नहीं चलाता है उनमें, शिव बाबा आगे मुरली चलाता था, शिव बाबा मुरली चलाते थे.
Of course, Brahma does not narrate the murli himself. Father Shiv used to come in him and narrate the murli.
लेकिन फिर भी मुरली तो मुरली बोला है कि ये ब्रह्मा क्या मुरली नहीं चला सकते?
Nevertheless, it is said, can this Brahma narrate murli?
खुदान खास्ता अगर शिव बाबा ना आए तो ये ब्रह्मा मुरली चला सकते हैं ना?
God forbid, if शिव बाबा doesn't turn up, this Brahma can narrate murli, can't he?
तो मुरली तो बहुत अच्छी चला लेते हैं, लेकिन याद में बहुत कच्चे हैं.
So he narrates murli in a very nice way, but in remembrance he is very weak.
तो इसका रिजल्ट क्या होगा?
Then what will be the result of this?
है? हाँ, फेल हो जाएंगे.
They will fail.
नरसे डायरेक्ट नारायण नहीं बन सकेंगे, बन सकेंगे.
They will not be able to become Narayan from Nar, that is man.
नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी नहीं बन सकेंगे.
They will not be able to become Lakshmi from a Nari, that is a woman directly.
तो बहुत कच्चे हुए.
This means they are very weak.
पूरा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो कच्चे हो गए.
They did not achieve the aim completely, so they became weak.
और फिर जब ब्रह्मा सरस्वती का ये हाल है.
And if this is the condition of Brahma and Saraswati,
तो और जो दूसरे दूसरे बच्चे पढ़ने वाले बैठे हुए हैं सन 67 में वहाँ माउंट आबू में.
Then the other children who used to study in the year 67 there in Mount Abu,
वो ज्यादा मजबूत हो जाएंगे क्या?
Will they become stronger?
ज्यादा मजबूत, ज्यादा याद में तीखे हो जाएंगे? नहीं.
Will they become sharper in remembrance? No.
अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, याद में बिल्कुल कमजोर हैं.
Very good children who narrate the Murli in a very nice way are extremely weak in remembrance.
बिल्कुल कमजोर हैं, तो वो 84 जन्म ले पाएंगे?
If they are extremely weak, will they be able to take 84 births?
नहीं ले पाएंगे.
They will not be able to take.
84 जन्म वही बच्चे ले सकते हैं जो याद में बहुत तीखे हो.
Only those children can take 84 births who are very sharp in remembrance.
और याद उन्हीं की तीखी होगी.
And the remembrance will be sharp of only those
जिनका उस मुकर्रर रथधारी आत्मा के साथ 84 जन्मों की पक्की प्रीति जुटी हुई होगी.
Who have true love with that soul of the chosen chariot for 84 births.
63 जन्म भी उस बाप के साथ उन्होंने अनेक संबंधों में पार्ट बजाया होगा.
Even in 63 births, they might have played a role with that father in various relationships.
अरे रामकृष्ण वाली आत्माओं के साथ जिन्होंने पार्ट बजाया होगा.
अरे
those who would have played a role with the souls of Ram and Krishna.
उनको इस जन्म में वो आत्माएं ऑटोमेटिक याद आएंगी या नहीं आएंगी?
Won't they remember those souls automatically or not in this birth?
हैं? आएंगी ना?
They will remember, won't they?
जिन्होंने कृष्ण के साथ दादा लेखराज वाली आत्मा के साथ अनेक जन्म पार्ट बजाए होंगे.
Those who might have played a role with Krishna, the soul of Dada Lekhraj for a number of births.
उनको दादा लेखराज ऑटोमेटिक याद आएगा? वो अम्मा की याद हो गई.
Will automatically remember Dada Lekhraj. That is the remembrance of the mother.
और जिन्होंने राम बाप के साथ अनेक जन्म पार्ट बजाया होगा, चलो किसी भी संबंध में.
And those who might have played a role with Father Ram for many births in whichever relation it may be.
तो उनको कौन याद आएगा? वो राम बाप का स्वरूप ऑटोमेटिक याद आ जाएगा.
Will remember whom? That form of the Father Ram will automatically come in their remembrance.
उनको ये कंप्लेंट नहीं होगी कि हमें साकार का चेहरा भूल जाता है.
They won't complain that they forget the face of corporeal father.
एक बार भी देख लेंगे.
Even if they see once.
तो देखने के बाद फिर वो भूल नहीं सकता.
After that they cannot forget him.
क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार भरे पड़े हैं.
Because the संस्कार्स ऑफ द प्रीवियस बर्थ्स आर फिल्ड इन देम.
इस योग से ही विकर्म विनाश होने.
द इविल डीड्स विल बी डिस्ट्रॉयड ओनली फ्रॉम दिस रिमेम्बरेंस.
क्या? किस योग से? हैं?
व्हाट? फ्रॉम विच रिमेम्बरेंस?
जो एक बाप एवर प्योर है.
द वन फादर हु इज एवर प्योर.
उस एक बाप की याद से ही.
ओनली बाय रिमेम्बरेंस ऑफ दैट वन फादर.
जन्म जन्मांतर के पाप कर्म.
अवर सीन्स ऑफ वेरियस बर्थ्स.
विकर्म माना विपरीत कर्म.
विकर्म दैट इज विपरीत कर्म.
जो श्रीमत के विपरीत कर्म किए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे.
मीन्स द एक्ट्स डन अगेंस्ट श्रीमत विल ऑल बी डिस्ट्रॉयड.
कर्म इंद्रियों की जो चंचलता होती है वो भी योग से ही शांत हो जाती है.
इवन द अनस्टेडीनेस ऑफ द ऑर्गन्स विल बिकम पीसफुल थ्रू योग रिमेम्बरेंस.
कर्म इंद्रिय चंचलता करती है ना.
द ऑर्गन्स आर अनस्टेडी aren't they?
जैसे किसी को बहुत भूख लगी हो, हैं? सारा दिन भोजन न मिला हो.
जस्ट लाइक समबडी इज वेरी हंग्री एंड द होल डे ही डिडंट गेट मील्स.
और कोई कोई की ऐसी आदत होती है भूख लगी हो न लगी हो कोई चीज में ज्यादा उनकी चित्त जाता है, बुद्धि जाती है.
एंड सम हैव अ हैबिट दैट वेदर दे आर हंग्री और नॉट इफ दे वुड हैव अट्रैक्शन फॉर समथिंग.
और वो चीज सामने आ जाती है तो भूख न लगे होने पर भी क्या करते हैं? खा लेते हैं.
एंड दैट थिंग कम्स इन फ्रंट ऑफ देम देन व्हाट डू दे डू इवन दो दे आर नॉट हंग्री दे ईट इट.
तो मान लो किसी को बहुत भूख लगी है.
सपोज अ पर्सन इज वेरी हंग्री
और उसकी इष्ट वस्तु जो इसको बहुत प्रिय है.
एंड हिज फेवरेट आइटम विच इज वेरी डियर टू हिम
वो उसके सामने आ जाए.
कम्स इन फ्रंट ऑफ हिम.
तो कर्म उसके उनकी हाथ उनकी आँख उनका मुंह चंचलता करेगा या नहीं करेगा?
देन विल हिज हैंड हिज आईज एंड हिज माउथ बिकम अनस्टेडी और नॉट.
पेट भरा हुआ तभी चंचलता.
नहीं पेट भरा हुआ तो भी चंचलता कर पड़ता है.
Even though his stomach is full, the organs will become unsteady.
तो बोला इंद्रियों की जो चंचलता होती है वो योग से ही शांत होगी.
So it was said, the unsteadiness of the organs can be at peace through remembrance alone.
कोई भी इंद्रियां हो, चाहे वो काम इंद्रिय हो,
whichever organs it may be, whether it is the organ of lust,
चाहे वो कोई लोभ इंद्रियां हो, लोभ मुख में बहुत आता है ना,
whether it is the organ of greed, greed comes mostly in the mouth, doesn't it?
जिभ्या में मुख आता ही नहीं, हैं?
The tongue is in the mouth, isn't it?
मुख में जिभ्या है, तो जिभ्या में लोभ आ जाता है.
Since the tongue is in the mouth, greed comes in the tongue.
कि ये चीज खाऊं, खाऊं, खाऊं की आदत पड़ी हुई होती
है. That I shall eat this thing, it becomes a habit to eat, eat and eat.
किसी की बहुत खाऊं खाऊं की खराब आदत होती है, तो अकेले में कोई चीज रखी होती है, उठा के खा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं.
Someone has a very bad habit of eating always, and if something is left alone, they pick it up and eat away. They will not spare it.
तो ये भी लोभ की आदत हुई ना.
So this also is the habit of greed, isn't it?
बाप कहते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई की भी याद न रहे.
The father says, except one father, no one else should be remembered.
तब कर्म इंद्रियां शांत होंगी.
Only then will the organs be at peace.
उसे एक को छोड़ करके औरों की और किसी कोई कितना भी ऊंचा हो.
Except that one, however high the others may be.
इब्राहिम बुद्ध ताइस्टी बनने वाला क्यों न हो.
Whether he may be the one who becomes Abraham, Buddha, Christ.
उनका आधार मूर्ति क्यों न हो.
Whether he is their supporting soul.
उन आधार मूर्तों का भी बाप ही क्यों न हो.
Whether he is the father of those supporting souls.
क्या जड़ों को भी जन्म देने वाला बीज होता है ना.
What? There will be a seed that gives birth to the roots, won't there?
तो उनका बीज रूप स्टेज वाला बाप ही क्यों न हो.
So whether he is their father in the stage of the seed form.
उनकी भी अगर याद करेंगे.
Even if we remember them.
तो भी कर्म इंद्रियां शांत होने वाली नहीं है.
Our organs will not become peaceful.
किसकी याद करेंगे तो कर्म इंद्रियां शांत होंगी.
By remembering whom will our organs become peaceful?
एक शिव बाबा जिसकी यादगार मंदिर में बनी हुई है.
It's only one Shiv Baba whose memorial is there in the temples.
शिव के मंदिर जो है वो लिंग रखा हुआ है. कहाँ रखा हुआ है.
In the temple of Shiv, the linga is kept. Where is it kept?
अभी मिसाल दिया ना. कोई को खाऊं खाऊं की आदत होती है.
Just now an example was given, wasn't it? Someone has the habit of eating and eating.
और परसी हुई थाली सामने आ जाए.
If the dinner served in a plate comes in front.
और उसकी वो चीज वो वस्तु जिसकी उसकी बहुत अटैचमेंट है उस वस्तु में तो फट से खा लेगा.
And the thing for which he has very much attachment is kept in it, he will eat it immediately.
तो ऐसे ही और कर्म इंद्रियां भी तो हैं.
Similarly, there are the other organs too.
उन कर्म इंद्रियों का भोग अगर सामने आ जाए.
If the object of enjoyment of those organs comes in front of them.
और आसपास कोई मौजूद ना हो तो इंद्रियां हठात उसको भोग लेंगी.
एंड नोबडी इज नियर बाय देन इमीडिएटली द ऑर्गन्स विल एंजॉय इट.
और खास करके पुरुषों के लिए तो जबरदस्ती बाबा ने बोल दिया.
एंड बाबा हैज स्पेशली टोल्ड फॉर ऑल मेल्स कंपल्सरीली.
सब पुरुष दुर्योधन दुशासन.
ऑल द मेन फॉक आर दुर्योधन दुशासन.
कन्या माता है उनको तो फिर भी गनीमत है. कोई कोई कन्या माताओं को छोड़ दिया.
There is a piece of good fortune for the virgins and mothers. Baba has left out some virgins and mothers.
जो सुपर्णखा पूतना है होती है उनकी बात छोड़ दो.
Who are Surpanakha and Putna? Just leave them aside.
बाकी पुरुष तो एकांत पाके और इंद्रियों के दास बने बगैर रहते ही नहीं.
As for the males, when they find solitude, they do not resist themselves without becoming slaves of their own organs.
तो इंद्रियों की चंचलता कैसे खत्म होगी. क्या तरीका बता दिया.
So then, how can the unsteadiness of the organs come to an end? What method was told?
उस एक को याद करो. किस एक को.
Remember that one. Which one?
जिसका यादगार मंदिर में बना हुआ.
That one whose memorial is kept in the temples.
और देवताओं की यादगार उसमें मुख कमल.
As to the memorial of the rest of the deities, in them the lotus mouth.
कमल नयन, कमल हस्त, कमल पाद.
Lotus eyes, lotus hands, lotus feet.
उनकी सब इंद्रियां कमल से विभूषित करके दिखाई जाती.
ऑल द ऑर्गन्स आर शोन ऑर्नामेंटेड विद द लोटस फ्लावर.
माने उनकी सब कर्मेंद्रियां पूजी जाती हैं देवताओं की.
इट मीन्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द डेटीज आर वर्शिप्ड.
और शिव बाबा की
पूरा
लिंग पूजा जाता है.
एंड द शिव बाबा लिंग इज वर्शिप्ड.
जो कामेंद्रिय है, जो काम विकार सबसे ज्यादा नष्ट करने वाला है.
द ऑर्गन ऑफ लस्ट द वाइस लस्ट विच कॉजेस अ लॉट ऑफ डैमेज.
वो कामेंद्रिय उनकी पूजी जाती है.
हिज ऑर्गन ऑफ लस्ट इज वर्शिप्ड.
उनका कान नहीं पूजा जाता, उनकी आंख नहीं पूजी जाती, लिंग पूजा जाता है.
हिज इयर्स आर नॉट वर्शिप्ड, आईज आर नॉट वर्शिप्ड, लिंगा इज वर्शिप्ड.
पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी.
व्हाट इज द बेसिस ऑफ वर्शिप? इट इज प्योरिटी.
तो वो तो एवर प्योर है, भले भोग के साथ ही क्यों न रखा हुआ हो.
ही इज एवर प्योर नो मैटर इफ ही इज केप्ट अलोंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट.
भोग की थाली में ही क्यों न रखा जाए.
नो मैटर इफ ही इज प्लेस्ड इन द प्लेट कंटेनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट.
फिर भी वो अपन इंद्रियों को कंट्रोल करके रखने वाला है.
स्टिल ही इज द वन हु कीप्स हिज ऑर्गन्स अंडर कंट्रोल.
इतना एवर प्योर है. तो ऐसे एवर प्योर को अगर याद करेंगे तो तुम्हारी भी कर्मेंद्रियां सब शांत हो जाएंगी.
ही इज एवर प्योर टू दैट एक्सटेंट. देयरफॉर इफ यू रिमेम्बर सच एन एवर प्योर देन ऑल योर ऑर्गन्स विल बिकम पीसफुल एज वेल.
एक बाप के सिवाय कोई याद न रहे.
एक्सेप्ट वन फादर नथिंग शुड बी रिमेम्बर्ड.
कोई की देह की याद नहीं रहे.
नो वंस बॉडी शुड बी रिमेम्बर्ड.
आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है.
द सोल नोज दैट दिस एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड.
क्या सारी दुनिया खलास होगी?
वॉट विल द एंटायर वर्ल्ड बी डिस्ट्रॉयड.
अगर सारी ही दुनिया खलास हो जाएगी तो फिर नई दुनिया शुरू कैसे होगी?
इफ द एंटायर वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड देन हाउ विल द न्यू वर्ल्ड बिगिन.
है नई दुनिया शुरू होगी या नहीं होगी?
विल द न्यू वर्ल्ड बिगिन और नॉट.
फिर कैसे शुरू होगी जब सारी दुनिया खलास हो जाएगी तो?
देन हाउ विल इट स्टार्ट व्हेन द होल वर्ल्ड इज फिनिश्ड ऑफ.
है
समवन सेड समथिंग.
हाँ विकारी दुनिया सारी खलास होनी है.
यस दिस होल विशियस वर्ल्ड इज टू बी डिस्ट्रॉयड.
अच्छा चलो विकारी दुनिया खलास हो जाएगी.
ओके द विशियस वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड.
और जो निर्विकारी देवताएं बनने वाले उनको याद करेंगे.
एंड दोस हु आर गोइंग टू बिकम द वाइसलेस डेटीज इफ वी रिमेम्बर देम.
तो कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी? क्यों?
विल आवर ऑर्गन्स बी एट पीस? समवन सेड नो. व्हाई?
विकारी दुनिया चलो खलास होनी है, वो तो खलास हो जाएगी, उनको तो याद नहीं करना है.
द विशियस वर्ल्ड इज टू बी फिनिश्ड, इट विल बी डिस्ट्रॉयड, दे आर नॉट टू बी रिमेम्बर्ड.
लेकिन जो निर्विकारी दुनिया में आने वाले उनको याद कर ले.
बट दोज हु आर टू कम इन द वाइसलेस वर्ल्ड कैन बी रिमेम्बर देम.
वो भी खलास हो जाएंगे.
दे टू विल बी डिस्ट्रॉयड.
उनको भी हम इन आंखों से अंत तक देखते रहे ये होगा नहीं.
इट वोंट बी सो दैट वी विल बी सीइंग देम थ्रू दीज आईज टिल द एंड.
एक ही ऐसा है जिसको शरीर छोड़ते हुए कोई इन आंखों से देख नहीं सकेगा.
देयर इज ओनली वन हुम नो वन विल बी एबल टू सी थ्रू दीज आईज लिविंग हिज बॉडी.
और सबको शरीर छोड़ते हुए देखेंगे.
दे विल सी एवरीबॉडी एल्स लिविंग देयर बॉडीज.
एक को शरीर छोड़ते हुए नहीं देखेंगे.
दे विल नॉट सी दैट वन लिविंग हिज बॉडी.
इसलिए भक्ति मार्ग में यादगार है क्या?
दैट इज वाई देयर इज अ मेमोरियल इन द पाथ ऑफ भक्ति. व्हाट?
कि शंकर जी जन्म नहीं लेते और शंकर जी की मृत्यु नहीं होती.
दैट शंकर जी डजंट टेक बर्थ एंड शंकर जी नेवर डाइज.
शरीर है कि नहीं उनको? शरीर है.
डज ही हैव अ बॉडी और नॉट? ही हैज अ बॉडी.
शरीर होते हुए भी उनका जन्म मृत्यु नहीं दिखाया गया.
डिस्पाइट हैविंग द बॉडी हिज बर्थ एंड डेथ आर नॉट शोन.
वो सिर्फ एक ही है. है? है.
ही इज ओनली वन. समवन सेड अमरनाथ. यस
अमरनाथ का तो मतलब यह है कि जो अमर हैं, जो मरते नहीं हैं, उनका नाथ, उनका स्वामी.
अमरनाथ मीन्स द लॉर्ड और स्वामी ऑफ दोज हु आर इमॉर्टल, दोज हु डोंट डाई.
सारी दुनिया खलास होनी है, अब हम जाते हैं अपने घर.
द होल वर्ल्ड इज टू बी डिस्ट्रॉयड एंड नाउ वी विल गो होम.
फिर आवेंगे राजधानी में
एंड देन वी विल कम बैक इन टू द कैपिटल.
ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए. क्या?
दिस शुड ऑलवेज बी देयर इन द इंटेलेक्ट. व्हाट?
कि हमको जाना है और जाकर के फिर वापस आना है.
दैट वी हैव टू गो एंड आफ्टर गोइंग वी हैव टू कम बैक अगेन.
अपनी राजधानी में आना है.
वी हैव टू कम इन टू अवर कैपिटल.
ज्ञान जो मिलता है वो आत्मा में रहना चाहिए ना.
द नॉलेज विच वी रिसीव शुड रिमेन इन द सोल शुडंट इट.
बाबा तो है योगेश्वर.
बाबा इज ऑफ कोर्स योगेश्वर.
क्या?
योगेश्वर.
जिसकी हमें याद करनी है, जिसकी याद से हमारी कर्मेंद्रियों की चंचलता शांत होगी.
व्हाट? द वन हुम वी हैव टू रिमेम्बर थ्रू हुज रिमेम्बरेंस द अनस्टेडीनेस ऑफ अवर ऑर्गन्स विल बिकम पीसफुल.
वो बाबा है योगेश्वर, योगियों का ईश्वर.
दैट बाबा इज योगेश्वर. ही इज द ईश्वर द एलिवेटेड रूलर ऑफ ऑल योगीज.
जो भी योग लगाने का पुरुषार्थ करने वाले योगी हैं, उन सब का नियंता कंट्रोलर योगेश्वर.
ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द योगीज हु डू द एफर्ट ऑफ मेकिंग योग दैट इज कनेक्शन
योगेश्वर.
योगेश्वर के रूप में कौन कौन को दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में?
हु आर शोन इन द फॉर्म ऑफ योगेश्वर इन द पाथ ऑफ भक्ति.
कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं और है? श्री कृष्ण के अलावा और किसको कहते हैं?
कृष्णा इज कॉल्ड योगेश्वर एंड अपार्ट फ्रॉम श्री कृष्णा हु एल्स इज कॉल्ड योगेश्वर.
शंकर जी को भी कहते हैं और
शंकर जी इज ऑल्सो कॉल्ड सो. समवन सेड राम. राम इज नॉट कॉल्ड सो.
और किसको कहते हैं? सनत कुमार को भी योगेश्वर कहते हैं.
हु एल्स डू दे कॉल सो? सनत कुमार इज ऑल्सो कॉल्ड योगेश्वर.
जो सृष्टि रची गई संकल्पों से.
द वर्ल्ड विच वॉज क्रिएटेड थ्रू द थॉट.
उस सृष्टि में ब्रह्मा के चार पुत्र दिखाए गए हैं पहले पहले.
इन दैट वर्ल्ड ब्रह्मास फोर सन्स हैव बीन शोन एट द बिगिनिंग.
उन चार पुत्रों में जो ज्ञान योग में सबसे बड़ा था.
अमंग दोज फोर सन्स द वन हु वॉज एल्डेस्ट इन नॉलेज एंड रिमेम्बरेंस.
उसका नाम था सनत कुमार.
हिज नेम वॉज सनत कुमार.
वो भी योगियों का ईश्वर कहा गया.
ही टू इज कॉल्ड द ईश्वर ऑफ योगीज.
वास्तव में सनत कुमार कोई और नहीं है, शंकर ही सनत कुमार है.
इन रियालिटी सनत कुमार इज नन अदर. शंकर हिमसेल्फ इज सनत कुमार.
तो वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर कहेंगे नहीं.
सो इन फैक्ट ईश्वर कैन नॉट बी टर्म्ड एज योगेश्वर.
बाबा योगेश्वर है, ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे.
बाबा इज योगेश्वर. ईश्वर कैन नॉट बी टर्म्ड एज योगेश्वर.
ईश्वर कौन हुआ और बाबा कौन हुआ?
देन हु इज ईश्वर एंड हु इज बाबा?
ईश्वर हुआ गॉड फादर सुप्रीम सोल.
ईश्वर इज गॉड द फादर द सुप्रीम सोल.
और शिव बाबा हुआ साकार तन के साथ शिव बाबा.
एंड शिव बाबा इज फादर शिव अलोंग विद द कॉर्पोरियल बॉडी.
तुम योगेश्वर हो.
यू आर योगेश्वर.
ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे.
ईश्वर विल नॉट बी कॉल्ड एस योगेश्वर.
माना शिव ज्योति बिंदु को योगेश्वर नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे?
इट मीन्स द पॉइंट ऑफ लाइट शिव विल नॉट बी कॉल्ड योगेश्वर. देन हु विल बी कॉल्ड सो?
शिव बाप को कहेंगे योगेश्वर.
विल बी कॉल्ड फादर शिव एस योगेश्वर.
वो कह रहे हैं शिव बाप को योगेश्वर कहेंगे. योग माने क्या?
शी इज सेइंग दैट वी विल कॉल द फादर शिव एस योगेश्वर. व्हाट डस योग मीन?
योग माने संबंध जोड़ना.
योग मीन्स टू डेवलप अ रिलेशन.
जो संबंध जुटता है वो ही याद आती है.
व्हेन द रिलेशन इज फॉर्म्ड इट इज रिमेम्बर्ड.
किसी को आंखों से देखा, बड़े ध्यान से देख लिया.
सपोज वी सी समबडी थ्रू द आईज वी सॉ देम केयरफुली.
तो फिर वो याद आएगा या नहीं आएगा? ऑटोमेटिक याद आएगा.
देन विल दैट पर्सन बी रिमेम्बर्ड और नॉट? ही विल बी नेचुरली रिमेम्बर्ड.
ऐसे ही कोई भी कर्मेंद्रिय से संग किया.
सिमिलरली इफ वी केम इन टू समवन्स कनेक्शन विथ एनी ऑफ द ऑर्गन्स.
अटैचमेंट पूर्वक अगर संग किया तो जरूर याद आवेगा.
इफ वी केम इन टू कॉन्टेक्ट विथ अटैचमेंट then definitely that will be remembered.
ऐसा हो नहीं सकता कि संग किया जाए और याद ना आवे.
It cannot happen that you came into the company and you don't remember them.
इसलिए इससे पहले की मुरली में बोला सत्संग की बड़ी महिमा है.
That is why it was said in the earlier murli, the true company is very much praised.
सत्य सिर्फ है एक.
Truth is only one.
इस दुनिया में सच्चा सिर्फ है एक है जिसकी सत्यनारायण की कथा गाई जाती.
Only one is true in the world, whose story of Satyanarayan, that is true Narayan, is sung.
और बाकी सब है? बाकी सब क्या है? बाकी सब झूठ.
And the rest are, what are the rest? All the rest are false.
सदगुरु है एक और गुरु है अनेक.
सदगुरु, the true guru is one and gurus are numerous.
तो सदगुरु एक है सत्य माना सच्चा गुरु. तो बाकी गुरु कैसे हो गए?
If Sadguru is one, Sat means true Guru. If Sadguru is one, then how are the rest of the Gurus?
साबा के गुरु सब झूठे हो गए? झूठे को याद करेंगे? तो झूठखंड की दुनिया में जन्म मिलेगा?
All the Gurus are false. If we remember the false Gurus, then we will take birth in the land of falsehood.
और सत्य को याद करेंगे? तो जो सच्चे खंड सत्य युग है, उसमें हम जन्म लेंगे.
And if we remember the truth, we will take birth in the land of truth, the golden age.
ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो.
ईश्वर the father says remember me.
देखो फिर ईश्वर बाप कहते हैं.
Look once again it is said ईश्वर the father says.
कौन कहते हैं? शिव बाबा नहीं कहते.
Who says? शिव बाबा doesn't say.
शिव बाबा नहीं कहते मुझे याद करो. कौन कहते हैं?
शिव बाप कहते हैं.
ईश्वर बाप.
शिव बाबा doesn't say remember me. Then who says? It is the Ishwar, the father who says so.
Ishwar Bap kon hua?
Who is Ishwar the father?
Bolo Navin bhai.
Speak up Navin bhai, Abhibi ke brother.
Ishwar Bap kon hua?
Who is Ishwar the father?
Suno, phir se suna dein. Baba to hai Yogeshwar, jo yog sikhate hai.
Listen, it will be repeated again. Baba is Yogeshwar who teaches yoga, that is remembrance.
वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे.
Actually, ईश्वर cannot be called as Yogeshwar.
तुम योगेश्वर हो.
You are Yogeshwar.
तो कौन हुआ योगेश्वर और किसको योगेश्वर नहीं कहेंगे?
So, who is Yogeshwar and who will not be called as Yogeshwar?
शिव बाप ज्योति बिंदु को योगेश्वर नहीं कहेंगे.
Father Shiv, a point of light cannot be called as Yogeshwar.
क्योंकि वो तो बिंदी कैसे सिखाएगी? फुदुक फुदुक की योग सिखाएगी क्या? नहीं.
बिकॉज हाउ वुड अ पॉइंट टीच? विल इट हॉप एंड जंप एंड टीच योग? नो.
वो जब किसी शरीर में प्रवेश करे.
इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट एंटर्स इन सम बॉडी.
तो प्रवेश करके चाहे आँखों से चाहे कोई भी कर्मेंद्रियों के संग के रंग से योग सिखाए सकता है.
एंड आफ्टर एंटरिंग मे बी थ्रू द आईज और मे बी With the color of the company of any other organs, he can teach you.
योगी बना संबंध जोड़ेगा. अलग अलग संबंधों की अलग अलग रचना होती है.
A yogi forms a relationship. There will be different pleasures in different relationships.
बाप का संबंध वो अलग इंद्रियों से होता है.
The relationship of father is from separate organs.
माँ का संबंध अलग इंद्रियों से होता है.
The relationship of mother is from different organs.
पति पत्नी का संबंध अलग इंद्रियों से होता है.
The relationship of husband and wife is from different organs.
तो इंद्रियों से ही स्नेह होता है.
So love takes place through the organs only.
तो जो संग का रंग जितना लगता है उतना ही याद में परिपक्वता आती है.
So then the maturity in the remembrance comes to the extent to which we come into the color of the company.
ये याद सिखाने वाला ईश्वर बाप है.
The one who teaches the remembrance is Ishwar, the father.
No, ये याद सिखाने वाला ईश्वर ईश्वर बाप है.
The one who teaches the remembrance is Ishwar, the father.
वो निराकार बाप शरीर द्वारा सिखाते हैं.
That incorporeal father teaches through the body.
है तो ईश्वर लेकिन किसके द्वारा सिखाते हैं?
Of course, he is Ishwar, but through whom does he teach?
साकार शरीर तो उसको क्या कहा जाता है?
थ्रू द कॉर्पोरियल बॉडी. सो व्हाट इज ही कॉल्ड?
शिव बाबा. उसको शिव बाबा कहेंगे।
शिव बाबा, he will be called शिव बाबा।
उसको शिव बाप, योग सिखाने वाले को शिव बाप नहीं कहेंगे।
The one who teaches us yoga will not be called as father शिव।
ओम शांति।